नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। एक आधिकारिक आदेश में ये जानकारी दी गई। गौरतलब है कि अक्टूबर 2022 में अशोक कुमार गुप्ता का कार्यकाल खत्म होने के बाद से प्रतिस्पर्धा नियामक में कोई पूर्णकालिक चेयरपर्सन नहीं था। सीसीआई सदस्य संगीता वर्मा पिछले साल अक्टूबर से चेयरपर्सन के रूप में काम संभाल रही थी। आदेश में कहा गया कि चेयरपर्सन को घर और कार के बिना प्रतिमाह 4.5 लाख रुपए का कुल वेतन मिलेगा। विदेशी कोषों की आवक जारी रहने के चलते रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे बढ़कर 82.20 रुपए पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी से रुपए की बढ़त सीमित हुई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82.22 पर खुला और फिर अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले 11 पैसे की बढ़त दर्ज करते हुए 82.20 पर पहुंच गया। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82.31 पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.06% गिरकर 102.37 पर आ गया। इस बीच वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.51% गिरकर $75.61 प्रति बैरल के भाव पर आ गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को शुद्ध रूप से 1,685.29 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। HDFC के दोनों शेयरों में गिरावट के चलते प्रमुख शेयर सूचकांकों ने मंगलवार को अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी और लाल निशान में आ गए। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों वाले BSE सेंसेक्स ने मजबूती के साथ कारोबार शुरू किया, लेकिन बाद में ये 146.79 अंक गिरकर 62,198.92 पर आ गया। इसी तरह NSE निफ्टी 32.15 अंकों की गिरावट के साथ 18,366.70 पर था। सेंसेक्स की कंपनियों में HDFC, HDFC बैंक, मारुति, इंडसइंड बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय एयरटेल और ITC को सबसे अधिक नुकसान हुआ। दूसरी ओर बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, बजाज फिनसर्व, विप्रो, एशियन पेंट्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लाभ में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शिंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसैंग लाभ में रहे। अमेरिकी बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुए थे। इसी बीच वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.53% चढ़कर $75.63 प्रति बैरल के भाव पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को शुद्ध रूप से 1,685.29 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। खेल एवं परिधान कंपनी प्यूमा इंडिया के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे चुके अभिषेक गांगुली और दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को अपना अलग उद्यम एजिलिटस स्पोर्ट्स स्थापित करने के साथ ही 430 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की। एजिलिटस स्पोर्ट्स के दो अन्य संस्थापकों में प्यूमा इंडिया के कार्यकारी निदेशक अतुल बजाज और मुख्य वित्त अधिकारी अमित प्रभु भी शामिल हैं। बयान के मुताबिक नई कंपनी खेल परिधान एवं आरामदेह उत्पाद मुहैया कराने वाले मंच के तौर पर काम करेगी। इसके जरिए भारतीय खेल पारिस्थितिकी के अनुरूप उत्पादों को पेश करने की कोशिश रहेगी। एजिलिटस स्पोर्ट्स में कन्वर्जेंट फाइनेंस LLP की सलाह पर कई कोषों ने 400 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत निवेशकों ने भी इसमें 30 करोड़ रुपए लगाए हैं। गांगुली ने पिछले हफ्ते जर्मनी की कंपनी प्यूमा की भारतीय इकाई के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। हालांकि गांगुली अगस्त तक अपने पद पर बने रहेंगे। उनकी जगह पर प्यूमा ने कार्तिक बाल गोपालन को नया प्रबंध निदेशक बनाने का ऐलान किया है। अडानी ट्रांसमिशन ने पात्र संस्थागत नियोजन आधार पर इक्विटी शेयर जारी कर 85,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए शेयरधारकों से मंजूरी मांगी है। शेयर बाजार BSE में दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने पात्र संस्थागत नियोजन आधार पर इक्विटी शेयर या अन्य पात्र प्रतिभूति जारी कर 85,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के लिए शेयरधारकों से मंजूरी मांगी है। कंपनी के निदेशक मंडल की 13 मई 2023 को हुई बैठक में 10 रुपए अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर या शेयर में बदले जाने वाले प्रतिभूति जारी कर कोष जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अडानी ट्रांसमिशन ने कहा कि उसे मौजूदा परिचालन में वृद्धि के अवसर दिख रहे हैं। कंपनी नई परियोजनाओं और विलय एवं अधिग्रहण के जरिए वृद्धि का अवसर देख रही है। सूचना के अनुसार इस वृद्धि और विस्तार के लिए कंपनी को पूंजी की जरूरत है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मार्च में समाप्त तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 31% बढ़कर 2,067 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे पिछले साल की समान तिमाही में एक्सचेंज ने 1,580 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। NSE ने सोमवार को अपने बयान में कहा कि तिमाही के दौरान उसकी एकीकृत परिचालन आय 31% बढ़कर 3,453 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। एनएसई के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 80 रुपये प्रति शेयर के लाभांश की सिफारिश की है। अंतिम लाभांश के लिए शेयर धारकों की मंजूरी ली जाएगी। आलोचित तिमाही में एनएसई ने मूल समाधान गारंटी कोष में 203.45 करोड़ रुपये का योगदान दिया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।